नमस्कार। हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर पूजा एमए प्रथम वर्ष की छात्राओं के चतुर्थ पेपर के अंतर्गत आने वाले शीर्षक लिपि एवं देवनागरी लिपि के बारे में बताऊंगी। सर्वप्रथम हम लिपि और लिपि का विकास के बारे में जानेंगे। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण या अक्षर के अंकित चिन्ह, लिखावट, लिखे हुए अक्षर, लिखने की विविध पद्धतियां इत्यादि हैं। डॉक्टर शिवचंद्र ने ब्लॉक एवं ट्रिगर द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा के आधार पर लिपि की परिभाषा देते हुए कहा है कि लिपि दृश्य यांत्रिक इच्छित प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके माध्यम से एक समुदाय परस्पर लिखित विचार विनिमय करते हैं। भाषा श्रव्य होती है और इसे दृष्टिगोचर बनाने के लिए जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। वस्तुतः भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह लिपि है। यदि भाषा भाव प्रकाशन का मौखिक साधन है, तो लिपि अभिव्यक्ति के कोश को अक्षुण रखने का लिखित माध्यम है। भाषा की उत्पत्ति के समान लिपि की उत्पत्ति का प्रश्न भी विवादग्रस्त एवं मात्र अनुमान पर आधारित है। लिपि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस संबंध में मत विभिन्न है। यह भारतीयों की देन है अथवा विदेशी अनुकृति है। लेखन के आरंभिक साधन क्या थे, लिपि का विकास किससे हुआ इत्यादि अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिनके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्रश्न आज भी एक समस्या अथवा पहले के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है। इस संबंध में एक प्रमुख भारतीय मत दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिनके अनुसार लिपि के आदि आविष्कारकर्ता ब्रह्मा है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि लिपि ब्रह्मा जी ने बनाई है, इसी का नाम ब्राह्मी है। लिपि की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा मत पाश्चात्य विद्वानों का है। लिपि के संबंध में पाश्चात्य मान्यता यह है कि भारत में लिपि की उत्पत्ति अधिक प्राचीन नहीं है। भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी का समय ईसा पूर्व तीसरी सदी है, जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में प्राप्त होता है। ये दोनों विदेशी लिपि की अनुकृतियां हैं और ये सेमेटिक लिपियों की वंशज हैं। वस्तुतः इन विभिन्न मतांतरों में कौन मत प्रमाणिक है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिकांशतः विद्वानों की यह मान्यता है कि भाषा की भांति लिपि भी मानव बुद्धिमता की अर्जित संपत्ति है। मनुष्य की आवश्यकता अनुसार मनुष्य द्वारा ही लिपि का जन्म हुआ। अब तक की उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्राचीनतम लिपि चिन्ह 6000 वर्ष तक मिलते हैं। लिपि के विकास क्रम के संबंध में डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने 6 प्रकार की लिपियां बताई हैं। प्रथम चित्रलिपि, द्वितीय सूत्रलिपि, तृतीय प्रतीकात्मक लिपि, चतुर्थ भावलिपि, पंचम भाव ध्वनि मूलक लिपि और छठे ध्वनि लिपि। इनमें चित्रलिपि, भावलिपि एवं ध्वनि लिपि ही मुख्य लिपि है। शेष गौण लिपियां हैं, इनका विवेचन भी हम इस प्रकार से देखेंगे। प्रथम चित्रलिपि। चित्रलिपि का वह प्राचीनतम एवं प्रारंभिक रूप था, जिसमें वस्तुओं को चित्रों के द्वारा अंकित किया जाता था। इस लिपि में पहाड़, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षियों इत्यादि की आकृति अंकित कर दी जाती थी। चित्रलिपि पत्थर, हड्डी, हाथी दांत, सींग, छाल, मिट्टी के पात्रों पर अंकित किए जाते थे। यह लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी थी। चित्रलिपि के नमूने हमें फ्रांस, स्पेन, यूनान, इटली, मिस्र, ग्रेट ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, ब्राजील इत्यादि देशों में मिले हैं। दूसरा, भाव लिपि। भाव लिपि विकास की द्वितीय मुख्य सीढ़ी थी। चित्रलिपि की श्रम साध्यता के फलस्वरूप भाव लिपि का उदय हुआ। भाव लिपि वह लिपि थी जो ध्वनियों को व्यक्त न करके भावों, विचारों और वस्तु आदि को प्रकट करती थी। यह वस्तुतः चित्रलिपि का ही विकसित रूप था, जिसमें चित्रों के सरलीकरण एवं संबंध अर्थ पर विशेष जोर दिया जाता था। जैसे सूर्य के गोले के लिए गोलों का निर्माण करना, रुदन के लिए आँख का चित्र बनाकर उससे आंसू टपकती बूंदों का प्रदर्शन, आदमी के लिए दो पैरों के रूप में दो रेखाओं का निर्माण, अस्पताल के लिए प्लस चिन्ह, खतरे के लिए गुणा चिन्ह के ऊपर खोपड़ी बनाना इत्यादि। तीसरा, ध्वनि लिपि। लिपि विकास का तृतीय सोपान ध्वनि लिपि थी। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें चित्र एवं भाव की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास पाया जाता है। ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में देवनागरी, रोमन, अरबी इत्यादि को ले सकते हैं। निसंदेह लिपि विकास की उल्लेखनीय देन है ध्वनि लिपि, जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ संकेत का निर्धारण हुआ और उसके द्वारा भावों, विचारों की अभिव्यक्ति होने लगी। भोलेनाथ तिवारी प्रभृति भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि लिपि के दो भेद किए, प्रथम आक्षरिक, द्वितीय वर्णिक। अक्षरात्मक लिपि में चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है, वर्ण को नहीं। जैसे नागरी लिपि आक्षरिक है, इसमें स्वर रहित का, स्वर रहित खा इत्यादि में व्यंजन स्वर रहित का में स्वर को प्लस करके का बनाया, दो वर्ण इसमें मिले हुए हैं। रोमन लिपि वर्णिक है, ऐसी ध्वनात्मक लिपि जिसमें लिपि चिन्ह ध्वनि की लघुत्तम इकाई को प्रकट करती हैं, वर्णिक लिपि है। जैसे के से केवल कै रोमन में व्यक्त होता है। उदय नारायण तिवारी ने इसे लिपि के विकास में सर्वोच्च स्थान दिया है। भोलेनाथ तिवारी का भी मत है कि लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी चित्रलिपि है, तो इसकी अंतिम सीढ़ी वर्णिक लिपि है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। लिपि विकास के अंतर्गत सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि एवं भावध्वनि मूलक लिपियों का भी उल्लेख मिलता है। वस्तुतः ये गौण लिपियां हैं, इन्हें हम इस प्रकार से देखेंगे। प्रथम, सूत्रों में गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा सूत्र लिपि है। सूत्र लिपि का उल्लेख हेरोडोटस ने किया। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीरो की क्विपू सूत्र लिपि है। ऐतिहासिक घटनाओं आदि का अंकन भी सूत्र लिपि में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, प्रतीकात्मक लिपि। वास्तविक अर्थ में लिपि नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ प्रतीकों के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति की जाती थी। कई देशों, कबीलों में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे लाल रंग युद्ध का प्रतीक था, तो सफेद रंग युद्ध विराम का प्रतीक था। तीसरा, भाव ध्वनि मूलक लिपि। कुछ अंशों में यह लिपि भाव मूलक लिपि थी, तो कुछ अंशों में ध्वनि मूलक। भोलेनाथ तिवारी ने भी लिखा है कि इस लिपि के कुछ चिन्ह चित्रात्मक तथा भाव मूलक होते थे, तो कुछ ध्वनि मूलक। दोनों का ही इसमें यथा समय प्रयोग होता था। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी की लिपि भी इस श्रेणी की है। भाव ध्वनि मूलक लिपि के अंतर्गत मेसोपोटामियम, मिस्र, हिंदी एवं आधुनिक चीनी लिपि इत्यादि आती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि लिपि के विकास में सूत्र एवं प्रतीकात्मक लिपि का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। इनका पूर्ववर्ती चित्रलिपि अथवा परवर्ती भावमूलक या ध्वनिमूलक लिपि से कोई भी सरोकार नहीं था। लिपि के विकास का प्रथम चरण चित्र लिपि है, जिसके विकास का अगला चरण भावमूलक लिपि है। कालांतर में भावमूलक लिपि विकसित होकर भाव ध्वनिमूलक लिपि और फिर यह ध्वनिमूलक लिपि में विकसित हुई। ध्वनिमूलक लिपि में भी आक्षरिक ध्वनिमूलक लिपि का स्थान पहले आता है, फिर वर्णिक ध्वनिमूलक लिपि आती है। वस्तुतः चित्रलिपि विकास क्रम की प्रथम सीढ़ी है, तो वर्णिक ध्वनिमूलक लिपि विकास क्रम का अंतिम सोपान है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।